शांति। फिर से सभी कहे ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक मधुर गीत सुना, आपके भी कानों में गूंजा होगा। कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच और महान। तो अभी का विषय है कर्म की गुह्य गति। कर्म की क्या पहचान है और हमारे कर्म ऊंच और महान कैसे बने, शिव परमात्मा ने इसके विषय में क्या हम आत्माओं को कहा है, वो अब हम सुनेंगे। वैसे तो जब कर्म सिद्धांत की बात आती है तो कहा गया है कि कर्म की गति अति गहन है। कर्म की गति को समझना बड़ा मुश्किल है। साधारण व्यक्ति इस गति को समझ नहीं सकता है, इसलिए उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों कि क्यों इसीलिए लग जाती है क्योंकि कर्म की गति को नहीं समझते हैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा करके बहुत खराब काम किया, या मैं भी क्या करूं, मेरे से भी ये हो गया, मुझे समझ में नहीं आया और ये हो गया। तो ये क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये सारे प्रश्न इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि कर्म की गति को नहीं समझते हैं। अब कर्म की गति क्या है, उसके पूर्व हम ये समझें कि कर्म क्या चीज है। वैसे अगर कर्म को परिभाषित करें तो साधारण सी परिभाषा कर्म की दे सकते हैं कि कोई भी प्रकार की क्रिया वो कर्म है। व्याकरण में क्रिया हम पढ़ते हैं ना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना, खाना, पीना, ये व्याकरण में क्रिया आता है। तो किसी भी प्रकार की क्रिया को कर्म कहा जाएगा। हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब क्रिया है। लेकिन वो क्रिया कर्म का रूप कैसे लेता है? कोई भी क्रिया बुरी चीज नहीं है। अब देखना जैसे बुरी चीज नहीं है, हम बैठे हैं कोई बुरी चीज नहीं है, हम बोल रहे हैं बुरी चीज नहीं है। आप कहेंगे भगवान ने हमें ये दिया है तो इसका हम उपयोग तो कर ही रहे हैं। आंखें भगवान ने दी है तो हम कोई देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? कोई अगर मुझे कहे ऐसे क्यों देखते हो, तो मैं कहूंगी भाई भगवान ने आंखें दी है तो देख रहे हैं, आंखें थोड़ी बंद करेंगे, हम अंधे तो नहीं है। लेकिन ये देखना पाप कब बनता है? देखना पाप नहीं है, लेकिन पाप कब बनता है? देखना बुरा नहीं है, परंतु ये देखना बुरा कब बन जाता है? जब उस देखने में दृष्टि कैसी है, वृत्ति कैसी है, स्मृति कैसी है, अंदर की स्थिति कैसी है, भावना कैसी है, भाव कैसा है, ये सब बातें उसमें सम्मिलित हो जाती है और उसी अनुसार वो कर्म वैसा बनता है। तो देखना पाप नहीं है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर उस देखने में वासना भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, नफरत भरी हुई है, वैर भरा हुआ है, तो ये देखना अवश्य पाप बन जाएगा। इसीलिए अगर उस पाप की दृष्टि से कोई देखता है तो उसको श्राप भी मिल जाता है। इसलिए कई बार ट्रकों के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, बुरी नजर रखने वाले हा? तेरा मुंह काला। तो जो बुरी नजर रखता है उसका मुंह काला, उसको श्राप मिल जाता है। वैसे तो ये नजर तो बहुत ऊंची चीज मानी गई है, किसी गुरु की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम तो कितने खुश होते हैं, वाह गुरु की नजर पड़ गई मुझ पर, गुरु की दृष्टि मुझे मिल गई, तो नजर से मैं निहाल हो गया, ऐसे कहते हैं ना। हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो मूर्ति की आंखें खुली है, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैंने उस मूर्ति का दर्शन किया, बस हम समझते हैं हम तृप्त हो गए। तो किसकी दृष्टि तो हमें तृप्त कर लेती है और किसकी दृष्टि हमें श्राप देने के लिए मजबूर कर देती है। तो आंखें तो वही है लेकिन अंदर की जो और बातें हैं उसके आधार पर उस देखने का स्वरूप बदल जाता है। जैसे दादी ने कल हमें बताया, ये 2.5 इंच की जिबान है, बोलना तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस 2.5 इंच की जिबान से जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। बोलना बुरा नहीं है, परंतु यही 2.5 इंच की जिबान चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। ये कहावत है, कोई संत महात्मा गुरुजन अच्छी बोली बोलने वाला होगा, उनको कहेंगे जरा 2 वचन और सुनाओ, बहुत अच्छा लगता है, दिन में सुन रहे थे अभी सुन रहे, बस सुनते जाएं सुनते जाएं। कई ऐसे बोलते हैं, बहन जी बस सुनाते रहो हम सुनते जाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर किसकी बोली कड़वी है तो बस 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 करो, नहीं सुनना है, कान ही बंद कर देंगे, चुप रहो चुप रहो। तो किसकी बोली के लिए कहेंगे और सुनाओ और किसके लिए कहेंगे चुप रहो चुप रहो। तो किसकी बोली ऐसी है जो तख्त पर उन्हें बिठाती है, कितना सम्मान दिलाती है, और किसी को तो तख्ते पर चढ़ाती है, फांसी की सजा दिलाती है। क्यों? उसने केवल बोला कि उसकी हत्या होनी चाहिए, बस केवल बोला, उसने खुद हत्या नहीं की लेकिन केवल आदेश दिया। तो हत्यारे को तो फांसी मिलेगी पर जिसने आदेश दिया उसको भी फांसी मिलेगी, ये सजा है। केवल मुख से कहा, भले कर्म खुद नहीं किया पर बोल में भी वो कर्म समाया हुआ है। तो हम देखें ये कर्म की गति क्या है। सबसे सरल से एक सरल गति ये समझना है कर्म के विषय में कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कर्म की गति है। अगर हम बीज अमरूद का बोते हैं तो हम कभी भी अपेक्षा न करें कि अनार का फल मिले, अमरूद ही मिलेगा। अनार का तब मिलेगा जब अनार का बीज बोएंगे, धान बोएंगे तो धान ही मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगी। इसलिए जैसा बीज वैसा फल, ये निश्चित है। विज्ञान में भी एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी थियरी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। और अगर इसको आध्यात्मिकता में ले तो हम कह सकेंगे कि अगर हम किसी को दुख देते हैं तो परिणाम क्या होना चाहिए, हमें दुख मिलना चाहिए। जे अगर दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, अगर नफरत रखेंगे तो नफरत ही मिलेगी, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि हम किससे नफरत रखें, नफरत करें और हम अपेक्षा करें कि वो मुझे प्यार दे। कैसे देगा? पहले हमने उसे प्यार दिया? या हम उसे प्यार दे और वो नफरत करे, ये भी हम स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। तभी तो कई लोग कहते हैं कि बहन जी मैंने किसी को दुख नहीं दिया, पर लोग मुझे क्यों दुख देते हैं, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया। आज तक बहन जी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे किसी को दुख पहुंचे। मैं तो सबको सुख ही देती हूँ, सेवा ही करती हूँ, सबसे मेरा प्यार है, सबके प्रति सम्मान रखती हूँ। लेकिन लोग मुझे दुख क्यों देते हैं? क्योंकि अपेक्षा यही है कि जैसा मैं करूँ मुझे वैसा ही मिले। अब यह कर्म की गति को समझना होता है कि अगर कोई मुझे दुख देता है तो इसमें दो बातें हैं, या तो कोई पुराने कर्म का हिसाब किताब है इसलिए वो दुख देने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरी बात है कि मैं उस दुख को स्वीकार ही ना करूं। जबरदस्ती कोई मुझे नहीं दे सकता है, जैसे अभी अभी आपने हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर सविता के बहन के द्वारा सुना, कोई जबरदस्ती किसी को दुख तो दे नहीं सकता। अब इसका दूसरा पहलू भी है, कोई समझे कि बहन जी मैंने इसको कभी दुख नहीं दिया, मेरे मन में इसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं, लेकिन ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसे क्यों बुरी भावना रखता है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि यही अपेक्षा है कि मेरे अंदर उसके प्रति बुरी भावना नहीं है तो उसको भी मेरे प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। भावना तो यही है, लेकिन अगर वो बुरी भावना रखता है जबकि मेरे अंदर नहीं है उसके प्रति, तो समझना चाहिए ये उसका अपना हिसाब किताब है, उनका अपना कर्म है। क्यों वो बुरी भावना रख रहा है? क्योंकि हो सकता है उसका संस्कार ही ऐसा है, ईर्ष्या का संस्कार है, वैर का संस्कार है, अनुमान का संस्कार है, शक का संस्कार है, ये उसका अपना संस्कार है, वो अपने कर्म से जूझ रहा है, ये उसकी अपनी गति है। आप क्यों दुखी होते हो? अगर आपकी भावना बुरी नहीं है तो आपको इसका दुख नहीं होना चाहिए, और ये दया करनी चाहिए कि बेचारा ऐसे सोच रहा है लेकिन अपने ही उधेड़ बुन में अपने आप को फंसा रहा है, ये मेरा अंदर में कोई कसूर नहीं है, तो भी हम दुखी न हो और ये दया करके उस आत्मा के प्रति भी हम सोचे कि भगवान इसको सुमति दे, ये समझ जाए कि ऐसे न करे। परंतु हम उसमें क्यों दुखी होते हैं कि मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचता, वो क्यों सोचता है? वो तो उसका अपना कर्म है, क्या पता उसका कौन सा कर्मों का हिसाब किताब अपना है जिसके कारण वो अपने आप को ही दुखी कर रहा है, आप उसमें क्यों दुखी होते हो? तो ये क्या है, ये समझने की बातें हैं। कई लोग समझते हैं कि अगर ईश्वर के घर में न्याय है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये देर बड़ी खटकती है लोगों को, क्यों देर है, तुरंत फैसला होना चाहिए, अंधेर लगता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ा सच्चा है, लेकिन जब देखो उनको कदम कदम पर लोग दुखी देते हैं, कष्टी देते हैं, तकलीफ ही देते हैं, कितनी समस्याएं हैं उनके जीवन में, जबकि वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, परंतु उसके जीवन में कदम कदम पर कई कष्ट हैं, तो लोग कहेंगे ऐसा कैसा न्याय, ये कितना अच्छा व्यक्ति, कितना ईमानदार व्यक्ति, और ऐसा इसके साथ हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति इतना बेईमान है, हेरा फेरी करने वाला, छल कपट, सब कुछ गलत करने वाला, और देखो तो मौज कर रहा है, मोटर गाड़ियों में घूम रहा है, हवाई जहाजों में घूम रहा है, एसी में बैठा हुआ है, लोग इतना उसको सम्मान दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, और देखो एक नंबर का, क्या कहेंगे नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो तो मौज कर रहा है। तो लोग कहते ऐसा कैसा न्याय, इस व्यक्ति को तो फांसी मिलनी चाहिए, और ये तो मौज कर रहा है, और ये बेचारा इसने कुछ भी नहीं किया और इसको जेल में डाल दिया, ईमानदार व्यक्ति को। अब यहाँ भी सोचना होता है कि लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। परंतु कर्म की गति क्या कहती है कि ये ऐसी बात नहीं है कि हर कर्म का फल तुरंत मिले। जैसे कई बीज बहुत जल्दी फल देते हैं, जैसे सब्जी का बीज डालो, फूलों का बीज डालो, बहुत जल्दी फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, वो सब्जी निकल आती है, जल्दी हो जाता है, एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, डिपेंड्स कि वो किसका वो बीज है। लेकिन कई ऐसे बीज होते वो बहुत देर से फल देते हैं, नहीं? आम का बीज पहले जमाने में कहा करते थे कि दादा बोए और पोता खाए, आम के बीज के लिए कहते थे। आजकल नहीं, क्योंकि हाइब्रिड्स हो गई हैं, जल्दी निकल आता है फल। लेकिन पहले जमाने में कहा करते थे कि जिसने बीज बोया वो अपने जमाने में कभी उसका फल नहीं खाता था, बहुत देर से फल निकलता था आम का, तो दादा बोए और पोता खाए। तो लेकिन कर्म का बीज ऐसा नहीं है कि दादा बोए और पोता खाए, ये उसी को ही खाना है। परंतु वो किस समय, किस रूप में, कहां, कैसे, किसके द्वारा, कितने समय के बाद होगा, ये तुरंत पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म कितना गहरा है ये भी देखना होता है। कई कर्म तो इतने गहरे नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए, छोटा सा मिसाल, हम एक अंगुली उठाते हैं और एक हवा में लकीर खींच ली, ये भी तो कर्म है। लेकिन ये लकीर दिखाई नहीं देगी क्योंकि हवा में खींच ली, और हवा तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए लकीर भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर यही अंगुली मैं पानी पर खींचती हूं तो क्या होगा? बाल्टी में पानी रखा है और मैंने ऐसे अंगुली खींची उसके अंदर, तो एक क्षण के लिए तो दिखाई देगी, हवा में खींची हुई लकीर नहीं दिखाई देगी, पर पानी पर लकीर तो दिखाई देगी एक क्षण के लिए ही सही, फिर मिट जाएगी क्योंकि पानी तो चलता ही रहता है। और अब यही लकीर अगर मैं रेत पर खींचती हूँ, सागर के किनारे बच्चे देखते हैं कुछ न कुछ बनाते रहते हैं रेत पर, तो वो रेत पर लकीर खींची हुई कुछ समय के लिए टिकी रहेगी, जब तक हवा का झोंका ना आए या किसी का पैर न पड़े तब तक वो लकीर दिखेगी, तो कुछ ज्यादा समय के लिए टिकेगी। परंतु वही लकीर एक नुकीली चीज लेकर के मैं पत्थर पर खींचूं तो क्या होगा? हाँ? वो बहुत समय तक चलेगी। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई, पत्थर पर लकीर। इसने तो ऐसे इसको ले लिया है जैसे पत्थर पर लकीर। हाँ? तो पत्थर पर लकीर भी लकीर ही है, हवा में भी लकीर है, रेत पर भी लकीर है, पानी पर भी है, लेकिन वो तो सब मिट गया पर पत्थर पर लकीर नहीं मिटी। तो कर्म तो वही है पर अंतर क्यों पड़ गया? क्योंकि कितनी गहराई थी उस क्रिया के अंदर, उस पर बड़ा निर्भर करता है। तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी धारणा, हमारे भाव, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, ये सब उसमें सम्मिलित हो जाती है, और उसका उसके आधार पर परिणाम किस समय, कब, कहां, किस जन्म में मिल सकता है। अगर वो इतना गहरा घाव है तो 7 जन्म तक भी उसका पीछा चलता ही रहेगा, ऐसा भी होता है। अब ये कर्म की गति हम कैसे समझें? इसलिए कई लोग कहते हैं, बहन जी हमको कैसे पता चले ये कर्म अच्छा है या बुरा है? कई लोगों के मुख पर हम सुनते हैं, बहन जी हमको क्या पता पाप क्या है, पुण्य क्या है? हम किसको कहें पाप और किसको कहें पुण्य? क्योंकि तुरंत पता नहीं चलता है पाप क्या है, पुण्य क्या है। कई बार कोई कहेगा, भाई झूठ बोलना पाप है। ठीक बात है, झूठ बोलना तो बिल्कुल पाप है। हम क्यों झूठ बोले? सच्चे रहो, सत्य परमात्मा की संतान है, ट्रांसपेरेंट रहो, जो है जैसे है सच बता दो। अगर कुछ हमने भूल की सच बता दिया तो आधी सजा माफ हो जाती है, परंतु सच नहीं बताते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। एक झूठ बोला तो कितने झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो और पाप पर पाप चढ़ता रहता है। तो इसीलिए जितना सच बोलो उतना आप सजाओं से मुक्त भी हो सकते हो, सच बता दिया, सरेंडर कर दिया तो सजा कम हो जाती है, और अगर बदल गए तो और भी सजा कम हो जाती है। जैसे कोई खूनी ने खून किया और तुरंत आकर के हैंडओवर कर दिया बंदूक, भाई ये मैंने ऐसे किया, अब कर तो दिया परंतु सच बता दिया उसने, तो उसकी आधी सजा माफ हो सकती है। और अगर जेल में उसको 10 साल की भी जेल की सजा मिली और जेल में उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया, बिल्कुल बदला हुआ, तो उसकी सजा जो फांसी होनी चाहिए थी वो 2 साल में ही पूरी हो जाएगी। ये कानून के अंतर्गत है, सच बता दिया। तो सच बताना ये अच्छी बात है, झूठ बोलना पाप है। परंतु थोड़ा अगर इसमें और विश्लेषण करें, कई ऐसी बातें होंगी जहां पर सच बताना उनसे भी बड़ा पाप हो सकता है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति रास्ते पर खड़ा है और वो उसने देखा कि एक गाय दौड़ती दौड़ती आई और भागती हुई आई और दाएं तरफ चली गई, और थोड़ी देर के बाद एक कसाई आया और उस कसाई ने मेरे से पूछा, मैंने देखा गाय चली गई और वो कसाई आते इतना बड़ा छुरा लेकर, वो तो वध करने जा रहा था गाय का, और वो भागी अपनी जान बचाने के लिए, और वो कसाई मेरे से पूछता है कि वो गाय किस ओर गई। अब मैं सच बताऊं या झूठ जी? क्योंकि मुझे इसका परिणाम मालूम है, ये उसका वध करेगा, उसको मारेगा, ये कितना बड़ा पाप होगा, गौ हत्या ये बड़ा पाप माना जा रहा है, तो मैं सच बताऊं या झूठ? अब ये झूठ पाप होगा ना, झूठ बोलना तो पाप है, है? तो यहाँ सच बताना पाप हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको रास्ता दिखाया कि जाओ हत्या करो। तो मानो कि कौन से कर्म में हमें क्या कहना है ये भी आदि मध्य अंत सोचना होता है, उसका परिणाम क्या होगा। मान लीजिए किसी की ऐसे निकट संबंधी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, अब ये इतना दुखद ये घटना है, लेकिन उसके जो एकदम निकट के संबंधी उसको तुरंत कह दो कि ऐसे हो गया, उसको तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो सोच समझ कर कहना होता है। किसी को कोई ऐसी बीमारी है, डॉक्टर को पता चल गया और वो पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या ये बीमारी है, अब डॉक्टर तुरंत बता दे क्या? वो सोच समझ करके बताएगा, वो कहेगा अच्छा देख रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उसका कल्याण किस में है वो सोचना होता है पहले। आदि मध्य अंत कितनी बातें होती है। तो ये नहीं कि ये झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक राज है कि इसका कल्याण न हो जाए। और फिर दूसरी बात, सच बोलना तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम गुस्से से सच बोलते हैं तो वो भी पाप बन गया, क्योंकि जितना झूठ बोलना पाप है उतना गुस्सा करना भी पाप है। जैसे कई समझते हैं ना, कोई किसी को कहते बहन जी वैसे मुझे गुस्सा कभी नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, झूठ क्यों बोला। अब थोड़ा सा सोचो, अब उसने तो झूठ बोला, चलो पाप किया, पर आपने गुस्सा किया, वो कौन सा पुण्य किया हा? और हो सकता है उसने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि उसको डर लगा कि आप गुस्सा करेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए उसके हाथ में एक ग्लास है और टूट गया, हाथ से गिर गया, अब माँ ने तो देखा नहीं पर टूटा हुआ ग्लास देखा, अब माँ पूछेगी बेटा ये तुमने तोड़ा, और हाथ उसके सिर पर है, अभी थप्पड़ लगाएगी। अगर वो बच्चा कहेगा हाँ मम्मी टूटा, वो पूछ रही है, थप्पड़ के साथ तैयार है थप्पड़ मल लगाने के लिए, बेटा ये तुमने तोड़ा। अब ये बच्चा असमंजस में होगा, मैं सच बताऊं या झूठ? अगर मैं कहूंगा हाँ मम्मी मैंने तो एक थप्पड़ मिलने वाली है, तो उस समय बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा? झूठ बोल देगा, अपनी रक्षा करेगा कि भाई मैं बोल दूंगा सच तो झूठ तो माँ मुझे मारेगी। अगर माँ प्यार से पूछती होती तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। और ही हमने देखा है माता पिता बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, हम लोग एक कहानी वो चित्र दिखाते हैं कि फोन आया घर में, बच्चे ने उठाया, बच्चे उठा लेते हैं फटाफट फोन, तो पूछते हैं आप कौन है, कहेंगे मैं फलाना हूँ, तो डैडी घर में बैठा है, डैडी आपके लिए फोन है, तो पूछेगा कौन है, तो कहेंगे फलाना। अब डैडी को उनसे बात नहीं करनी है, तो कहेगा उनको बोलो घर डैडी घर में नहीं है। अब ये किसने सिखाया, पिता ने सिखाया कि उनको बोलो डैडी घर में नहीं है। अब बच्चा तो बड़ा सच्चा, वो कहेगा डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूँ। तो बच्चे ने तो जो है जैसी बात है वो तो कह डाली, उस बेचारे को क्या पता ये छल कपट। तो इसलिए बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं, लेकिन अगर माँ उसको मारने वाली है तो वो अपनी रक्षा करेगा। तो जितना झूठ बोलना पाप है उतना क्रोध करना भी पाप है। कई कहते क्रोध कैसे नहीं आएगा बहन जी, किसके सामने उसने गुस्सा झूठ बोला, मेरे सामने बोला, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। अब पता नहीं मैं कौन हूँ ये अभिमान है इंसान का, कौन भी हूँ तो भी क्या हुआ, किसके आगे भी कहा, क्योंकि अपनी रक्षा की उसने। ये तो हमारा अभिमान है जो हम कह रहे हैं, उसको पता है किसके सामने बोला उसने। तो वास्तव में पाप क्या है पुण्य क्या है वो समझना है, इतना ही नहीं है झूठ बोलना। सबसे बड़ा झूठ तो हम पल पल पर बोलते हैं और ये सबसे बड़ा पाप करते हैं। कौन सा सबसे बड़ा झूठ है कि मैं ये शरीर हूं, ये कितना बड़ा झूठ है। मैं वास्तव में कौन हूं, आत्मा हूं, मैं ये शरीर थोड़ी हूं, इस शरीर के भीतर मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये ज्ञान तो हम भूल ही गए हैं और सुबह से लेकर रात्रि तक अभिमान के वश मैं ऐसा, पता नहीं कितनी बार ये मैं का हम नारा लगाते रहते हैं। बेचारा बकरा या बकरी, वो तो उनकी भाषा है मैं करना, लेकिन इंसान भी सारा दिन अभिमान वश जो मैं करता रहता है, ये पाप के खाते में उनका शब्द जा रहा है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, पाप की क्या परिभाषा दी है और पुण्य की क्या परिभाषा दी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल क्या अभिमान। हम बोलते हैं देखो बोल दिया अभिमान, पाप का मूल क्या है, अभिमान है। तो ये अभिमान वश मैं कहना ये कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा पाप है। तो पाप की क्या परिभाषा है, शिव परमात्मा हमें कहते हैं कि पाप कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला दरवाजा पाप का है ये देह का अभिमान, और हम दिन भर उसी अभिमान के वश हर कर्म करते हैं, तो कितने पाप हमारे सुबह से रात्रि तक बनते होंगे जरा सोचिए। क्योंकि इसी देह अभिमान के वशीभूत हम विकारों के वश होकर के कर्म करते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी, इन सब की जड़ है ये देह का अभिमान। काम वासना क्यों होती है, दृष्टि में वासना भरी हुई है, देह को देख रहे हैं। अगर यही दृष्टि आत्मिक हो जाए तो ये दृष्टि कितनी शुद्ध हो जाए। क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हम अपने आप को अभिमान वश देख रहे हैं इसीलिए गुस्सा आता है। पर ये अगर ज्ञान है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ जैसे बहन जी बता रहे थे, तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम किस लिए हम कुछ कमा रहे हैं, पेट के लिए कहते हैं ना, चलो पेट के लिए कमाते हैं, परंतु पेटियों के लिए अगर कमाते हैं वो लोभ हो गया तो वो पाप के खाते में जाएगा। इसलिए देखेंगे आज कि ये जितने भी विकार है इन विकृतियों के कारण समाज आज दूषित हो गया है। काम वासना का अति विकराल स्वरूप क्या है, बलात्कार। आप सोचिए एक नारी का को पर बलात्कार कितना बड़ा पाप है। वही नारी हमारी बहन के रूप में, हमारी माँ के रूप में, हमारी बेटी के रूप में है। अब उसके प्रति हम कितनी दृष्टि अच्छी रखेंगे, परंतु ये पराई स्त्री है तो वासना भरी दृष्टि से देखेंगे। चाहे अपनी भी स्त्री क्यों ना हो, केवल वासना की पुतली तो नहीं है ना, वो भी तो एक आत्मा ही है। अगर हम हमारी भावना उसी दैहिक भावना से होगी तो नेचुरली वो पाप के खाते में जाएगा। कई कहते बहन जी ये काम वासना ही से तो रचना होती है, परंतु चलो काम वासना से कलयुगी दुनिया में रचना होती है। कई कहते बहन जी ये न हो तो दुनिया कैसे चलेगी। चलो माना इनसे ही कलयुगी दुनिया में रचना होती है, पर रचना तो ज्यादा चाहिए नहीं, दो से ज्यादा तो बच्चे चाहिए नहीं है आजकल। जितना जितने ज्यादा बच्चे झंझट ही है, तकलीफ ही तकलीफ है। वो भी लिखेंगे हम दो हमारे दो, बस फैमिली प्लानिंग करते हैं, बस ज्यादा नहीं होंगे। पहले जमाने में तो पता ही नहीं होता था, 10 बच्चे पैदा कर लेंगे, पता नहीं कितने बचेंगे, कितने जीते जीते रहेंगे। आजकल तो विज्ञान इतना आगे बढ़ा है तो हम उसको जिंदा रख सकते हैं, मतलब कई बातें हैं। पहले इसीलिए करते थे कि पता नहीं कितने बचेंगे इस प्रकार से। तो इसीलिए जब रचना ज्यादा नहीं चाहिए फिर काम वासना किस लिए चाहिए। तो कई समझने लगे कि नहीं ये काम वासना तो शरीर का भोजन है। अब कैसे उस शरीर के भोजन से उसकी भेंट कर सकते हैं। हमारे भारत में कम से कम 1 करोड़ तो सन्यासी होंगे, संत महात्माएं गुरुजन सन्यासी 1 करोड़ से कम नहीं होंगे। जब मेले लगते हैं कुंभ मेला, लाखों सन्यासी उसमें होते हैं। अब वो सब ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो क्या मर जाते हैं, मर जाते हैं क्या। और ही अगर जीवन में पवित्रता है तो उनकी आयु तो और ही लंबी हो जाती है, क्योंकि भोगियों की जीवन की आयु छोटी हो जाती है, क्योंकि भोग विलास से तन और मन बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि सचमुच ये काम वासना के वशीभूत जो मनुष्य होते हैं वो उनकी तुलना हम किससे करते हैं, पता है किससे करते हैं, हाँ किससे करते हैं, कुत्ते से करते हैं। बड़ा कड़ा है ये उदाहरण, लेकिन ये इंसान कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। जैसे कुत्ते का मिसाल दिया जाता है कि वो हड्डी चूसता है, हड्डी उसके मुंह में डालो वो चूसता रहेगा चूसता रहेगा। हड्डी में तो कुछ शक्ति तो है ही नहीं, चलो कैल्शियम होगा क्या होगा। अब वो उसके मसूड़ों से खून निकलता है, कुत्ते के मसूड़ों से अपना ही खून निकलता है, और वो खून जो उसके मसूड़ों से निकला वो चूसता है और उससे उसको टेस्ट मिलती है। हड्डी में टेस्ट नहीं है, पर मसूड़ों से जो खून निकला उसके ही उससे जो उसको टेस्ट मिली उससे लगता है कि उसको हड्डी से बड़ा सुख मिलता है। लेकिन ये अपना ही खून पी रहा है, हाँ? सोचो अपने मसूड़ों को बिगाड़ रहा है, दांतों को बिगाड़ रहा है, हड्डी से तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो इंसान भी आज अपनी शक्ति को क्षीण करता जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि अपनी आयु इस प्रकार घटाता जा रहा है। कई बार तो यहाँ तक भी हम सुनते हैं आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान। अरे बूढ़ा होता गया और तृष्णा तो जवान ही होती गई, उसकी वासनाएं जवान होती जाती है। वैसे चलो अगर कोई कहे कि बहन जी ये नेचुरल है, पर शास्त्रों में तो इतने तक तो कहा है 25 साल तो ब्रह्मचर्य में रहो, ये पढ़ाई का जीवन है 25 साल तक। आज वो भी कहाँ है, आप स्कूलों कॉलेजेस में जाइए क्या बुरी हालत हुई पड़ी है, वो पवित्रता की दृष्टि तो खत्म ही हो गई है। चलो 25 से 50 तक चलो ये ग्रस्त जीवन के लिए आदेश मिला हुआ है, पर 50 के बाद तो वानपरस। 50 तक चलो माना, पर उसके बाद तो वानपरस। ये तो 70-80 साल के भी बूढ़े हो जाएंगे तो भी तृष्णा जवान होती जाती है, तब सोचो। और 75 की बात तो सन्यास, ये हमारे शास्त्रों की बात है। और ये भी तो तब शास्त्रों में लिखा गया था 100 साल तक की इंसान की आयु होती थी तब, भाई 25 तक ब्रह्मचर्य, 50 तक ग्रस्त, उसके बाद वानपरस और 75 के बाद सन्यास। अब वो भी क्या गारंटी है कि 100 साल कोई जिएगा, गारंटी है क्या? आप बाप बैठे बच्चा चला जाता है, क्या गारंटी है? तो हम देखें कि ये काम वासना का जो विकराल स्वरूप आज दुनिया में बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि दृष्टि और वृत्ति इतनी दैहिक हो गई है। तो फिर देखिए क्रोध का विकराल स्वरूप क्या है? हत्या। अब किसी ने केवल दो गाली दी, चलो वो गाली चलो लगी भी कहां, लेकिन वो दो गाली का परिणाम क्या होगा? इतना गुस्सा आएगा, बंदूक उठाई और मार डाला। अरे मारा क्यों? तो गाली तो दी, आपने उसकी हत्या कर दी। फिर इतना गुस्सा आता है कि उसको तो मारेंगे, उसको पता है कि मैं भी बचूंगा नहीं, तो खुद को भी मार डालते, खुद को भी मार डाले, उसको मारा फिर खुद को भी मारा। अरे अगर खुद को ही मारना था तो उसको मार के क्यों मारे? मरना ही था आपको भी, तो उसको मार के क्यों मरे? तुमको ही मरना था, डबल पाप कर दिया। चलो वो भी कोई पागल हो गया तो करेगा, लेकिन इतने समझदार व्यक्ति जो आतंकवादी बनते हैं, ह्यूमन बॉम्ब बनते हैं, किस लिए बनते हैं? उनको पता है हम तो मरने वाले ही हैं, पता है, लेकिन जानबूझ करके अपनी जान को हथेली पर रख करके मैं अकेला क्यों मरूं? मेरे साथ 100, 500, 1000 साथ में मरे, मनुष्य मानव बम बन जाते हैं। आजकल ये बहुत कुछ हो रहा है सारी दुनिया में, मानो ये पाप का घड़ा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आखिर फूटेगा या नहीं फूटेगा? फूटेगा या नहीं? ऐसा ही चलता रहेगा? रोज अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं, क्या नहीं आतंकवाद कर रहा है, किस लिए, क्या चाहते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं धन कितना चाहिए पेट के लिए, लेकिन उसका लोभ इंसान को भ्रष्टाचार करा रहा है। भ्रष्टाचार आज एक ऐसा, मानो एक जैसे दीमक लकड़ी को लग जाती या कहीं भी लग जाती है, उसको खोखला कर देती है। तो समाज को आज भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है। हम केवल जीने के लिए खा नहीं रहे हैं, पर ऐसे लगता है जैसे खाने के लिए जी रहे हैं। इसीलिए नहीं तो धन किस लिए? खाने के लिए चाहिए, परंतु उसके लिए थोड़ी धन कमा रहे हैं, क्योंकि पेट को तो ज्यादा नहीं चाहिए। और फिर चौथा देखिए, मोह के वश। आज इतने अपने आप को दुखी कर देते हैं, जो बात मत पूछो, मोह इतना सताता है। अब हर एक इंसान जो इस संसार में आया है, एक दिन तो उसको जाना ही है, परंतु मोह वश इंसान अपने आप को भी गलाता रहेगा। पता भी है कि वो आत्मा वापस नहीं आएगी, और अगर हम उसको शांति देना चाहते हैं तो हमको भी शांति में रहना होगा। ये कड़वा सत्य है, लेकिन इसको स्वीकार करना होगा, परंतु मोह के वश होकर के हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। कई बार बाबा मिसाल देते हैं कि जो मोह के वश होती है ना, कोई माताएं कई ऐसे भाई भी मोह के जो वश होते हैं, उनको किनसे भेंट करते हैं? बंदरी से। बंदरी होती है ना, बंदरी, हमने तो यूपी में बहुत देखा, कानपुर में देखा, इलाहाबाद में देखा, लखनऊ में भी देखा, ये लाल मुंह वाले बंदर होते हैं। तो एक जगह में मथुरा में गई थी, वहां मेला लगा हुआ था, तो हमने देखा एक बंदरी, उसका बच्चा मर गया था, लेकिन मरा हुआ बच्चा, वो उसकी केवल हड्डियां थी बस, बाकी तो सब उसका वो मांस तो खत्म हो गया था, वो हड्डियां वाला वो जो ये पिंजरा, वो भी अपने छाती से जकड़े हुए घूम रही थी बंदरी, है? उसको पता ही नहीं कि ये तो बच्चा तो मर ही गया है। तो मनुष्य की तुलना जो अगर मोह के वश है, तो बाबा कहते जैसे बंदरी, बंदरी मरे हुए बच्चे को भी ऐसे छाती से लपटाए वो चलती रहेगी, मोह है ना। वैसे तो बाबा बंदर का मिसाल देते, सारे ही विकार बंदर में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, काम वासना भी अति, क्रोध भी अति, लोभ भी, मोह भी। वो यूपी के बंदर तो बड़े खतरनाक है, ये माउंट आबू के जो है ना, ये बंदर काले मुंह वाले हैं, इनको वो क्या बोलते हैं, लंगूर, ये बड़े अच्छे हैं, आपने जब माउंट आबू आप गए होंगे बड़े प्यार से बैठे हैं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं। हम तो गए थे जब ये इलाहाबाद गए थे तो हमने वहां देखा वो लाल मुंह वाला बंदर, हमने कपड़े सुखाए बाहर, बस कपड़े उठा के मेरे सामने फाड़ दिए मेरे सामने, मैं देख ही रही हूँ, वो दिखा रहा है कि मैं फाड़ रहा हूँ, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े खतरनाक होते हैं काले मुंह वाले, फिर भी इतने नहीं होते हैं। और यहाँ लेकिन है सब खतरनाक, या एक लाल मुंह वाला बंदर आ गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया, लाल मुंह वाले है नहीं लेकिन वो कहीं से आ गया था, लेकिन ये काले मुंह वाले लंगूरों ने उनको रहने नहीं दिया, भगा दिया, पता नहीं भाग गया या मर गया या क्या, फिर नहीं देखा, एक ही देखा था। पर कहने का भाव है कि मनुष्य भी आज इस प्रकार से हो गया है। एक इस पर चुटकुला बताते हैं कि आज का इंसान इतना गिर गया है अपने कर्मों से, जो जानवरों से भी बदतर उसकी स्थिति हो गई है, जानवर भी उनसे अच्छे हैं। तो एक मिसाल देते, एक चुटकुला है लिखा, तो व्यंग है, इंसान ने व्यंग लिखा होगा, कि दो जानवर आपस में वार्तालाप कर रहे थे और एक दूसरे को कहता है कि अरे भाई हमने सुना है कि आज का जो इंसान है ना वो जानवर जैसा हो गया है। तो दूसरा कहता है क्या उसकी प्रमोशन हो गई है, मानो जानवर समझते हैं इंसान अगर जानवर जैसा बन जाए ये प्रमोशन है। तो कहा कैसे, तो कहा देखो हम जानवर कितना प्यार प्रेम से रह रहे हैं, कोई धर्म भेद नहीं। जानवरों में कोई धर्म भेद होता है क्या, ये हिंदू जानवर है ये मुसलमान जानवर है, ऐसे होता है क्या? कोई धर्म भेद नहीं, कोई भाषा भेद नहीं, सबकी भाषा एक ही होगी जो भी एक जाति के जानवर होंगे, तो भाषा भेद नहीं, रंग भेद नहीं, देश भेद नहीं, प्रांत भेद नहीं, कोई भेद नहीं। और इंसान देखो, ये भेद किसने बनाए, भगवान ने बनाए, किसने बनाए, हम नहीं बनाए, भगवान ने तो नहीं बनाए ना, भगवान के आगे तो हम सब आत्माएं हैं, बच्चे हैं। तो हम देखें कि फिर वो चुटकुले में आता है, तो दूसरा कहता है ये मत कहो कि आज का इंसान बंदर जैसा हो गया है, यानी जानवर जैसा हो गया, ये तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन ये कहो कि आज का इंसान हैवान जैसा हो गया है। ये हैवान कहना ये उसके लिए ठीक है उक्ति, हैवान कहना। अब हैवान कहो या देवता कहो, देवता और दानव में अंतर क्या है? है तो दोनों ही मनुष्य के रूप में। आज लक्ष्मी नारायण का मंदिरों में पूजन होता है, क्यों पूजन होता है? साकार में तो हमारे तरह ही है वो, दो हाथ दो पैर, दो आंखें दो कान, एक नाक एक मुख, बिल्कुल हमारे तरह ही है। परंतु उनका पूजन होता है और आज के इंसान का तो इस रूप से पूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? संत महात्मा गुरुओं का भी पूजन करते हैं, वो भी तो हमारी तरह है, परंतु क्यों उनकी पूजा होती है, क्यों देवताओं की पूजा होती है और बाकियों की नहीं होती है? कारण है उनकी पवित्रता। पवित्रता जो उनकी आत्मा के अंदर है उसका पूजन है, ये शरीर की बात नहीं है। शरीर तो पांच तत्वों की चीज है, ये तो विनाशी है। तो पूजन उनकी आत्मा का होता है, उनकी पवित्रता का पूजन होता है। पर है तो दोनों ही इंसान के रूप में, हैवान या राक्षस को तो मारना होता है। इसीलिए शास्त्रों में कंस कृष्ण राम रावण का जो युद्ध दिखाया है, इसीलिए दिखाया है ये बताने के लिए कि इंसान जब हैवान जैसा हो जाता है, राक्षस जैसा हो जाता है, तो समझो उसका काल निश्चित है, अंत निश्चित है। परंतु ये देवताएं ही तो दानव बने, और कौन दानव बने? अभी ये भी हमें समझना है कि देवता और दानव और मानव में अंतर क्या है, वृत्ति का अंतर है और कुछ नहीं है। किसके लिए कहेंगे ये तो सचमुच जैसे देवता, और दूसरे के लिए कहेंगे ये तो जैसा राक्षस। अब क्या अंतर है? दिखाई तो वैसा ही दे रहा इंसान, पर अंतर वृत्ति का है। दानव की वृत्ति क्या होगी? दानव की वृत्ति क्या होगी, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। तो तेरा सो मेरा बनाने के लिए मैं अनेक युक्तियां रचूंगा, कैसे मैं उसको अपना बना लूं। फिर छल कपट निंदा चुगली बेईमानी हेराफेरी झूठ हत्या न जाने क्या क्या हथकंडे कर हम कोशिश करते करके ताकि उसकी चीज मैं जब्त कर लूं, ये दानव की वृत्ति। और साधारण मानव की वृत्ति क्या होगी, साधारण मानव जो थोड़ा पाप से डरता है वो कहेगा ठीक है भाई तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, तुम अपनी चीज रख मुझे नहीं चाहिए, पर मैं अपनी चीज नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारी चीज भी नहीं चाहिए। बीच में दीवार खड़ी कर देगा, दो भाइयों के बीच पार्टीशन हो गई, तुम अपने घर में सुखी मैं अपने घर में सुखी, मेरे घर में तुम मत आना मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, खत्म। ये साधारणता है, तेरा हाँ तेरा अलग मेरा अलग, तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। पर देवता की वृत्ति क्या होगी, देवता की वृत्ति क्या होगी, तेरा सो मेरा, ऐसे मेरा सो तेरा और तेरा भी तेरा, नहीं मेरा सो तेरा सो मेरा। सब देवता हैं, देवता की वृत्ति पहले जमाने में आप देखते थे कितना प्यार प्रेम था लोगों के बीच में। मेरे घर में अगर चीनी नहीं है तो मेरे पड़ोसी के घर में जाऊंगी कहूंगी जरा चीनी देना, अभी कौन बाजार में जाए वो मुझे देगा। उनके घर में कोई नमक की कमी हुई मेरे घर में आएगा, हम कहेंगे क्यों नहीं। पहले जमाने में टांडे देते थे, किसी के घर में कोयला जलाना है तो कोयला नहीं है तो पड़ोसी के घर में वो टांडा लेने जाते थे, नहीं कोयला लेने जाते थे, जरा मुझे अपने घर में आग सुलगानी है तो टांडा दे दो। हाँ क्यों नहीं, सब आपका है आपका, मानो ये देवता की वृत्ति है। इसीलिए वो एक कहानी सुनाते हैं, कहानी में आता है कि इंद्रदेव के पास असुर लोग गए शिकायत करने कि आप इंद्रलोक में केवल देवताओं को ही क्यों बुलाते हो, असुरों को क्यों नहीं बुलाते हो, हमें भी बुलाओ। तो इंद्रदेव ने न्योता दिया असुरों को, लेकिन एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी, कि ये सब निमंत्रण आपको है और ये बड़ा व्यंजन है, बहुत सारे व्यंजन, जितना चाहिए खाओ, लेकिन शर्त है कि हाथ को मोड़ के नहीं खाना। सुनिए कहानी, सुनिए, कुछ एक ने सुनी होगी, हाथ को मोड़ के नहीं खाना। तो असुरों को न्योता मिला स्वर्ग में आने का और उनको ये शर्त दी। अब असुरों के मुख में तो पानी आ गया, लड्डू पेड़े ये सब कुछ देख करके, वाह वाह बहुत कुछ माल था, लेकिन कैसे खाए, हाथ पर डंडा बंधा हुआ था, मोड़ तो सकते नहीं थे। तो क्या किया, एक ने हाथ में उठा करके उछाला लड्डू या पेड़ा, हवा में उछाला और मुंह खोला ताकि हवा से मुंह में आए, और हाथ ऐसा, तो एक ने दूसरे को देखा उन्होंने भी ऐसा किया हाथ ऐसा, तो लड्डू पेड़ों को देख रहे और हाथ ऐसा करते, एक दो को धक्का मार रहे हैं तो लड्डू पेड़े भी गिरे, तो एक दो पर भी गिरे और लड्डू पेड़े उन पर और वो लड्डू पेड़ों पर, लेकिन किसी के भी मुंह में लड्डू पेड़ा नहीं गया। अब देवताओं की बारी आई, शर्त वही थी, पक्षपात नहीं किया इंद्रदेव ने। तो पक्षपात बिना शर्त रखी कि आपको भी हाथ मोड़ के नहीं खाना है, तो कैसे खाया देवताओं ने, मैं अपने मुंह में नहीं डाल सकती हूं, तो आपके मुंह में तो डाल सकती हूं ना, हाथ सीधा है तो दूसरे के मुंह में तो डाल सकती हूं। तो जब एक ने उठाया और दूसरे के मुंह में डाला तो दूसरों ने भी एक दो दूसरे के मुंह में डाला, इतना प्यार प्रेम एक दो में बना रहा और वो लड्डू पेड़े सब सफल हो गए, सबके मुंह में चले गए, पर असुर तो देखते ही रह गए। अब ये ख्याल असुरों को क्यों नहीं आया कि मैं भी तो दूसरे के मुंह में डाल सकता हूं, ये देवताओं को ही ख्याल आया, क्योंकि असुर कौन, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। लेकिन हम सब यहाँ कौन बैठे हैं, कोई सब देवताएं बैठे हैं ना, जरूर। तो इसीलिए कर्म की परिभाषा हम समझें, कितने प्रकार के कर्म होते हैं और उन कर्मों का प्रभाव युगों पर कैसे पड़ता है और युग कर्मों के प्रभाव से बदलते हैं। ये नहीं कि युगों के आधार पर कर्म होते हैं, कर्म के आधार पर युग बदलते हैं। आज कई कहते हैं क्या करें बहन जी, कलयुग है ना, कलयुग, कलयुग माना ही काला युग, कलह युग, क्लेश का युग, कल माना लोहा उसका युग, तो ये सब होंगे ना कर्म। लेकिन कलयुग किसने बनाया? हमने अपने कर्मों से बनाया। तो सतयुग कैसे बनेगा? हाँ, हमारे कर्मों से ही बनेगा। तो कैसे ये कलयुग आ गया, कौन से कर्म किए और कौन से कर्मों से सतयुग बनेगा, ये कर्मों का ज्ञान भगवान ने हमें दिया है कि चार प्रकार का कर्म होता है। मनुष्य तो केवल आप आज दो प्रकार के कर्म जानता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म, लेकिन चार प्रकार के कर्मों का ज्ञान भगवान ने दिया है जो हम करते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये अलग प्रकार के, वो जो पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो हम करते हैं अपने हाथों से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से जो भी कर्म करते हैं वो चार प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म है पाप कर्म, दूसरा कर्म है पुण्य कर्म, तीसरा कर्म है सत्कर्म और चौथा कर्म है अकर्म। अब ये कर्म है, अब इनकी परिभाषा हम समझेंगे। पाप की परिभाषा क्या है? जो भी कर्म देह के अभिमान से शुरू होता है और विकारों के वशीभूत होता है, स्वार्थ भाव से भरा हुआ होता है, दूसरों के अकल्याण के लिए होता है, वो सब कर्म पाप के खाते में जाता है। देह अभिमान, विकारों से वश के वशीभूत, स्वार्थ भाव और अकल्याण की भावना और ईश्वर से बेमुख, उस वक्त परमात्मा की याद नहीं होती है, बस अंदर में अकल्याण भरा हुआ है, दूसरों का अहित भरा हुआ है और अपना स्वार्थ भरा हुआ है, खुद को ही देखता है। और इंसान विकारों के वशीभूत होकर के, ईश्वर से बेमुख होकर के कर्म करता है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं परिणाम? तन के रोग, ये परिणाम है, मन की अशांति, धन की खींचातानी, धन की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर ये धन पाप की कमाई से खाया लिया तो ये धन सुख नहीं देगा, पेट में जाकर भी पेट को चीरेगा, दर्द लाएगा। ये पाप की कमाई का धन पेट को भी सुख नहीं देगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि जो सहज मिले वो दूध बराबर, वो शक्ति प्रदान करेगा, दुआओं के साथ मिलेगा। जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी बराबर, वो केवल प्यास बुझाएगा, शक्ति नहीं देगा, उस समय का की खुशी देगा वो धन जो मांग करके लिया, लेकिन शक्ति नहीं देगा। और जो खींच लिया वो रक्त बराबर, ये सतगुरु की वाणी। तो अब हमें कौन सा धन कमाना है? जो सच्चाई का धन हो। तो पाप कर्मों का हम देख रहे हैं परिणाम, तन के भी रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी और संबंधों में अनबन। नहीं तो संबंध का मतलब होता है जहाँ प्यार प्रेम हो, आज वो संबंध बंधन बन गए हैं। इसलिए बंधन माना जो दुख देने वाला है, संबंध सुख देता है, क्योंकि ये कर्म की गति है। अब जब ये हमको समझ में आ गया तो हमें अब शिव परमात्मा कहते हैं कि अपने कर्मों को परिवर्तन करो, और उसके लिए शिव बाबा ने आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दिया है कि अपने आप को आत्मा समझकर हर कर्म करो। तो ये दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाएगी। मैं आत्मा हूं और सबको मैं आत्मा रूप में देखूं तो क्या होगा, मेरी दृष्टि पवित्र बन जाएगी। आत्मा हूं और आत्मा को देख करके उनसे मैं व्यवहार करूं तो मेरा कर्म शुद्ध हो जाएगा। मैं भी उसको शांत स्वरूप आत्मा देखूं, प्रेम स्वरूप आत्मा देखूं, सुख स्वरूप आत्मा देखूं और मैं भी वैसी ही हूं और परमात्मा के हम बच्चे हैं, कितना सुंदर वातावरण समाज में बन जाए। तो इसलिए ये दूसरे प्रकार के कर्म हमें शिव परमात्मा अभी सिखा रहे हैं, क्योंकि जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, समय का ज्ञान प्राप्त किया, काल चक्र को पहचाना, कर्म का ज्ञान प्राप्त किया, अब उसके लिए कलयुग नहीं है। अब हम कभी नहीं कहेंगे हम कलयुग में, हम संगम युग पर है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि चरण, ये बीच का संधि काल है, इसीलिए संधि का बड़ा महत्व है। यानी कई जैसे नदी का संगम, गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयाग में हम देखते हैं कितना उसका महत्व होता है, उसमें स्नान करते हैं। अभी अधिक मास बीता, अधिक मास का कितना महत्व होता है, उसमें कितना दान पुण्य करते हैं, समझते हैं बड़ा पुण्य बनता है, ये अधिक है, एक्स्ट्रा है। तो जहाँ नदी और सागर का संगम, कलकत्ता में देखते हैं नदी सागर का संगम है, बड़ा उसका महत्व है, लोग उसमें स्नान करते हैं। लेकिन ये किसकी यादगार है, वास्तव में दो युगों की यादगार है, कलयुग और सतयुग का बीच का संगम। ये बड़ा कल्याणकारी संगम युग है। वैसे तो हर युग के बाद संगम आता है, सतयुग त्रेता के बीच में भी संगम आएगा, त्रेता द्वापर के बीच में भी संगम आएगा, द्वापर कलयुग के बीच में भी संगम आएगा। लेकिन वो जो संगम है, उन संगमों में हम नीचे ही गिर रहे हैं। सतयुग से त्रेता में ही आएंगे, कलाएं कम हो जाती है, आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। द्वापर में आए तो और कलाएं कम हो गई, कलयुग में आए तो बिल्कुल कलाहीन हो जाती है आत्मा। लेकिन अब ये फिर से चढ़ती कला का समय है। कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। नीचे उतरने में एक एक कदम हमने नीचे उतारा अपना, एक एक सीढ़ी नीचे उतरे और अधिक से अधिक 84 जन्म लिए। लेकिन ऊपर जाने लिए भगवान ने हमें ये राजयोग की लिफ्ट दी है। कई मकानों में, बिल्डिंग्स में आप पढ़ते होंगे, ऊंची बिल्डिंग होती है लेकिन लिफ्ट एक ही है और बहुत लोग हैं चढ़ने उतरने वाले, तो उस पर लिखा रहता है लिफ्ट नॉट अवेलेबल फॉर गोइंग डाउन, लिफ्ट अवेलेबल ओनली फॉर गोइंग अप। यानी ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है, नीचे जाने आने के लिए लिफ्ट नहीं है। तो नीचे आना है तो सीढ़ियों से आओ और ऊपर जाना है तो लिफ्ट में जाओ। तो इसीलिए नीचे उतरने के लिए सीढ़ी से आए एक एक जन्म, पर ऊपर चढ़ने के लिए भगवान हमको अभी लिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी लिफ्ट? सत्कर्म की लिफ्ट। ये ऐसे सत्कर्म हैं जिसके द्वारा हम सब महसूस करते हैं कि एक जीवन में ही इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, जो मानव देवता बन जाता है, जिसके लिए कहते नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो सत्कर्म की क्या परिभाषा है? सत्कर्म, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, परिभाषा बिल्कुल पाप के ऑपोजिट। जो कर्म आत्मा की स्थिति से किया जाता है, विकारों से रहित, परमात्मा की याद में निस्वार्थ भाव से, सर्व के कल्याण के प्रति तन से, मन से, धन से, अपनी विशेषताओं से, सबके भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो कर्म होता है, वो कर्म सब सत्कर्म बनता है, ये समझ लो। और इनका फल इतना ऊंचा है कि ये जन्म तो हमारा दुर्लभ हो ही जाता है, लेकिन दो युग तक सत्युग और त्रेता में मानव देवता के रूप में उन सत्कर्मों का फल प्राप्त करता है, जिसमें तन निरोगी, मन की शांति, धन अकीचार, कुबेर का धन और संबंध इतने रसदार, इतना सुख देने वाले, जो आज भी उन देवताओं के चारों स्वरूपों का हम पूजन करते हैं। जो उनका तन निरोगी, तो उसका आज इसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी कोई मूर्ति की पूजा करेंगे तो अखंड मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है। होती है कभी कोई मूर्ति बनाते समय आंख भी टेढ़ी हो गई तो गई काम से, ये मूर्ति काम की नहीं, उंगली कट गई ये मूर्ति काम की नहीं। पूजा के लिए उस प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होगी वो उसी मूर्ति की होगी जो अखंड मूर्ति होगी, नहीं तो अगर मूर्ति बिगड़ गई बनाने में तो म्यूजियम में रख देंगे, वो बगीचे में चिड़िया उस पर बैठेगी, घोंसला बनाएगी, वो जाएगी, लेकिन मंदिर में कभी नहीं रखेंगे, पूजा नहीं होगी। तो अखंड मूर्ति की पूजा होती है। और जो चेहरा भी बनाएंगे, कितना सुंदर चेहरा देवियों का, देवताओं का, देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, तो मन कितना उनका प्रसन्न होगा क्योंकि चेहरा इतना प्रसन्न है, तो जब वो चेतन में होंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। और धन की तो कोई कमी नहीं, हम तो श्रीनाथ द्वारे में एक दिन गए थे देखने के लिए, तो क्या इतने बड़े बड़े लड्डू, हमने कहा ये इतने बड़े बड़े लड्डू का बाल गोपाल को खिलाना है, बड़े बड़े, मैंने कहा बेचारा बाल गोपाल कितना खाएगा, इतने लड्डू और देसी घी के लड्डू, कुएं भरे हुए हैं देसी घी के। आप बालाजी में जाइए, वेंकटेश्वरा जो आंध्रा में जो मंदिर है तिरुपति में, कितना धन बिल्कुल उसको सौंपते हैं, बात नहीं पूछो, सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को वो तिरुपति के मंदिर से मिलती है, नहीं बालाजी के मंदिर से। तो हम देखें कि वास्तव में ये धन, इतना कुबेर से भी अधिक धन ये देवताओं को प्राप्त था, धन की कोई कमी नहीं थी, जो धन की देवी लक्ष्मी कहलाई, कितना धन होगा उनके पास, प्रकृति उनकी दासी, जो आज उनको कितना सम्मान मिलता है, साष्टांग नमस्कार उनके आगे करते हैं, दुआएं मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, तो कितने वो स्वयं भरपूर होंगे, सोचने की बात है। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं, बहन जी आप लोग देवताओं को मानते हो, हम कहते क्यों नहीं मानते हैं, तो कहते आप लोग उनकी पूजा तो करते नहीं हो, जैसे मंदिरों में पूजा होती है, आप भाई मूर्ति बना के उनकी पूजा करें, हम कहते हैं कि हम उनको मानते तो क्या, उनको जानते भी हैं, उन जैसा बनते भी हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये देवताएं कोई और नहीं थे, हमारा ही पूज्य स्वरूप था, मानव ही देव था, और ये कैसे बने वो भी हम जानते हैं, सत्कर्मों से इतने ऊंचे बने, और हम वो सत्कर्म इस समय कर रहे हैं, खुद को पहचान कर, परमात्मा को पहचान कर वो सत्कर्म कर रहे हैं, ताकि मानव वो देव बन जाए। अब इसके लिए हम ये भी जानते हैं कि दो युग तक हमारा जीवन कैसा होगा, जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव होगा। कई लोग कहते हैं इस संसार में हम क्यों आए, ये संसार तो दुखों का घर है, हम कहते बिल्कुल नहीं, संसार सुखों का घर है, ये संसार बड़ा सुखरूप है, ये भगवान की रचना है, तो भगवान अगर सुख का सागर है तो उनकी रचना दुखरूप होगी क्या। लेकिन क्यों समझते हैं कि ये जीवन ही बंधन है, क्योंकि इस समय कलयुग में मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं उससे बंधन बनते जा रहे हैं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है, सत्कर्म का ज्ञान ही नहीं है, तो नेचुरली बंधन बन जाएगा, तब लगता है ये संसार तो दुख रूप है, नहीं तो वास्तव में ये संसार बड़ा सुख रूप है। मानव जब देव समान था, अकाले मृत्यु कभी नहीं होती थी, जो आज की स्थिति में हम अकाले मृत्यु देख रहे हैं, 150 साल की दीर्घायु थी, जिसमें भी अंत के समय देवताओं की आत्माएं स्व इच्छा से देह त्यागती थी कि अब ये शरीर पुराना हो गया है और आत्मा को साक्षात्कार होता था कि अब मैं एक नया चोला धारण करूंगी, तो पुराने चोले को यही छोड़ना है। वहां मृत्यु जैसा शब्द भी नहीं था, क्योंकि मृत्यु शब्द बड़ा दुखदाई है, लेकिन देह त्याग ये कितना सुखदाई शब्द है। जैसे वस्त्र बदलना, इसमें दुख की क्या बात है। अब ये कपड़े मैले हो जाए और मेरे सामने ताजे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये उतार के दूसरे पहनूंगी तो दुख होगा क्या? दुख होगा, खुशी होगी ना, ये गंदे मैले पसीने वाले निकालो, नए कपड़े पहनूंगी। तो ये आत्मा को वहां साक्षात्कार होता है कि अब ये पुराने चोले उतार कर नया चोला धारण करेंगे। जैसे सांप अपनी चमड़ी उतारता है, उसको मृत्यु थोड़ी कहते हैं, वो उतर गई चमड़ी, सांप तो जीवित ही है। तो आत्मा तो है ही चेतन, आत्मा तो है ही अमर, तो इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं, क्योंकि मृत्यु जैसा शब्द उस दुनिया में है ही नहीं। वो इस भारत भूमि पर ही तो था, सत्युगी दुनिया में ही तो था, और वही स्वर्ग कहलाता था। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, किसी आकाश गंगा में या कोई ग्रह में या कोई सूरज में, कोई स्वर्ग की बात नहीं है, या नरक कहीं नीचे नहीं है कि कोई पाताल है कोई नरक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन चार युगों को एक सीढ़ी का रूप दे तो आधा भाग स्वर्ग है आधा भाग नरक है। ये खेल बना हुआ है स्वर्ग और नरक का, विस्मृति स्मृति का, दिन और रात का, हार जीत का, ये खेल है। सदा ही खेल में हार ही हार नहीं, सदा ही खेल में जीत ही जीत नहीं, कभी जीत है तो कभी हार है। हार है तो जीत के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, और जीत है तो खुशी है। तो इसीलिए ये खेल के रूप में हम इस संसार के ड्रामा को देखते हैं। तो दो युग तक जीवन मुक्ति की स्थिति थी। अब कई कहते हैं कि आप लोग ये मानते हो कि देवताएं नर्क में गए, हम कहते हैं देवताएं नरक में गए ऐसे नहीं कहते हैं। किसी ने मुझे आज दिन में पूछा कि बहन जी ये लोग यहाँ कहते हैं कि आप लोग कहते हो कि देवताएं नरक में गए, हम कहते हैं नरक में गए ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सत्कर्मों का फल जो खाते गए सत्युग त्रेता में, खाते गए खाते गए खाते गए, आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा हा? अब कुएं से पानी निकालते जाओ बारिश पड़े ही नहीं, तो आखिर क्या होगा, सूख जाएगा। आप बैंक में 1,00,000 रुपया डालो और रोज आप 1,000 रुपया निकालते जाओ, रोज निकालते जाओ, तो आखिर क्या होगा, 100 दिन के बाद क्या होगा, हिसाब खाली ना, बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा, खाता खत्म। तो इसी प्रकार सतयुग त्रेता में जो हमने इस संगम पर सत्कर्म किए, वो इन दो युगों में प्रकृति का चरम सुख प्राप्त करते इनको खा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो कई कहते आगे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, अब आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जोड़े किसके लिए, क्योंकि इतनी प्रारब्ध है पर ये पता ही नहीं कि ये खाते जा रहे हैं, क्योंकि आगे सत्कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। तो कई कहते क्यों वहां भगवान को याद नहीं करते होंगे, क्यों याद करेंगे भगवान को, खुद ही देवता के स्वरूप में है, खुद ही पूज्य है, तो मंदिर बना करके किसकी पूजा करेंगे, सोच समझे ना, खुद ही पूज्य रूप है। लेकिन मंदिर बनाना कब शुरू हुआ, जब द्वापर युग शुरू हुआ। तो दो युग तक सतयुग त्रेता के ये दो युग वास्तव में देवता के रूप में आत्माएं हैं, इतना चरम सुख प्राप्त कर रही है, जो वहां ही वो स्वर्ग की दुनिया कहलाती, कोई दूसरा स्वर्ग कोई ऊपर रखने ऊपर की बात नहीं है। लेकिन हम जब खाते गए तो नेचुरली खाता खाली हो गया, तो देवताओं के कर्मों को सत्कर्म भी नहीं कहते, पाप कर्म तो है ही नहीं, क्योंकि विकार वहां है ही नहीं, तो उन कर्मों को क्या कहते, अकर्म। अकर्म की परिभाषा क्या है, प्रारब्ध कर्म को हम अकर्म कहेंगे, जो हम फल के रूप में पा रहे हैं। इसलिए अकर्म का रूप हम कह सकते हैं, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कैसे वो देवताएं खाते 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 आखिर खाली हो गए। तो त्रेता पूरा हुआ, दो हाथ की ताली बजी, आत्मा खुद को भूल गई, भूल करके देह समझने लगी, तो विकारों की प्रवेशता हुई। जब विकारों की प्रवेशता हुई तब दुख शुरू हुआ। इसलिए उन सत्कर्मों का परिणाम खाते खाते अकर्म करते करते आखिर हिसाब पूरा हुआ, और वो देवताएं मनुष्य रूप में आए, यानी कि नरक में आए, पर संसार नरक बन गया, अर्थात विकारों की प्रवेशता हुई। तो कई पूछते वो 33 करोड़ देवी देवताएं कहाँ चले गए, हम कहते हैं सब इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं। कहाँ चले गए देवी देवताएं, कहाँ गए, मनुष्य रूप में ही आएंगे ना। लेकिन द्वापर युग से कर्मों का खाता बदल गया। क्या, कैसे, पाप और पुण्य का खाता द्वापर युग से शुरू हुआ। दो युग, द्वापर कलयुग में दो प्रकार के कर्म होते हैं, या तो पाप कर्म या तो पुण्य कर्म। अब पुण्य कर्म की परिभाषा क्या है, जो हम समाज सेवा में लगाते हैं, तन मन धन, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, कुआं खोदना या धर्मशाला बनाना, न जाने कितने हम धार्मिक कार्य भी करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें अन्न दान, वस्त्र दान, भू दान, रक्त दान, नेत्र दान, ये जो दान हम करते हैं वस्तुओं का, ये पुण्य का खाता बनता है। लेकिन ये पुण्य का खाता एक जन्म का फल देता है। धन दान किया तो धनवान के घर में जन्म लिया, मंदिर बनाया तो धार्मिक विचार वाले बने, ये कोई धर्मशाला बनाई तो बड़ा मकान, बड़ी जमीन हमको मिली, जहां जन्म लिया, मानो एक जन्म का फल हम प्राप्त करते हैं। पर हर जन्म में फिर करो, हर जन्म में प्राप्त करो, तो इस प्रकार का कर्म का फल है। लेकिन धीरे धीरे ये पुण्य कर्म का खाता भी पाप का रूप लेता जाता है, क्योंकि अभिमान, विकार, विकृतियां सब उसमें भरती जाती है, उसका बहुत विस्तार है। दान भी करते हैं तो पात्र को दान देना होता है, कुपात्र को धन दिया तो निष्फल गया, जैसे बीज को बंजर धरती में डाल दिया तो निष्फल गया। तो पात्र भी हो, योग्य भी हो, आवश्यकता भी हो, तब वो दान पुण्य बनता है। फिर गुप्त भी हो, प्रचार न हो उसका, तब वो पुण्य बनता है कि दायां हाथ करे तो बाएं को पता भी न चले, इतना गुप्त हो। नेकी कर, दरिया में डाल वाली बात हो, सोचो भी नहीं कि मैंने कोई पुण्य किया भी है, कोई भला किया भी है, करो और भूल जाओ। लेकिन ये सब कलयुग में कहाँ होता है, तो परिणाम स्वरूप वो पुण्य भी धीरे धीरे नाम का हो जाता है, बाकी तो सब निष्फल ही जाता है, और पाप का खाता बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जो कलयुग के अंत में हम पहुंचे हैं और पाप अति तक पहुंच गया है, अब इस पाप के खाते को अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे परम धाम। शिव बाबा कहते हैं वापस घर जाने का समय आ गया है, इस पाप के खाते को यही खत्म करना है। और तीन तरीके हमें बताते हैं शिव बाबा। पहला तरीका है राजयोग। शिव परमात्मा कहते हैं तू मुझे याद कर, तो पाप कर्म का खाता खत्म करने का पहला तरीका है कि हम परमात्मा को याद करें। जितना उसको याद करेंगे उतना हमारे पाप धुलते जाएंगे। दूसरा कदम है उतने सत्कर्म करें तो पापों की सजा खत्म हो जाएगी। और तीसरा कदम है कि हम जो कुछ भी कष्ट आते हैं हम उसको कष्ट न समझ करके, हिसाब किताब चुकता हो रहा है ये समझ करके अपने खाते को, पापों के खाते को खत्म करें। अगर ये नहीं किया तो परमात्मा कहते हैं याद रखो मैं धर्मराज भी हूँ, और धर्मराज की सजाएं बड़ी मशहूर है। इसीलिए कहा ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो अभी क्या करना चाहते हो, आप सभी क्या करना चाहते हो, धर्मराज की सजाएं तो नहीं खानी है ना, कि खानी है। तो सत्कर्मों की पूंजी जमा करके हम आत्माएं जाएं, यही हमें शिव परमात्मा कह रहे हैं। तो यहां से ये शिक्षा लेके जाएंगे, अपने अंदर में ये धारणा करके जाएंगे, यही आपसे अपेक्षा है। अब आप, हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोलन बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम बोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े तो वह पछताना, पड़े तो वह पछताना। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े तो वह पछताना, पड़े तो वह पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।